ना उधर खड़े होंगे
बच्चे, कोई साइड पे नहीं आएंगे।
हरे कृष्णा, बैठ जाइए जल्दी फटाफट।
चलिए
अगर तैरना नहीं आता तो
गिर गया।
वैसे तो ज्यादा नहीं है इसमें, हम लास्ट ईयर आए थे जब आश्रय को लेके, तो हम वॉक करके गए थे उस पार तक पैदल पूरी। हम बीच बीच में पानी ऊपर नीचे गड्ढे होते हैं ना एक्चुअली, तो पानी तो ऊपर से फिल होता है, पता नहीं चलेगा आपको कहाँ कितना गहरा है, तो कहीं 10-15 फीट भी है, कहीं पर 1-2 फीट भी है, ऐसा भी है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
कैसा लग रहा है आप लोगों को?
बहुत मजा।
हाँ जी,
आनंद में।
ऊंचाई पे बैठ और ऊपर जाना। तो हमने 6 गोस्वामियों के बारे में चर्चा करी थी। कौन कौन से गोस्वामी हैं बताएंगे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह से ये 6 गोस्वामी वृंदावन आते हैं, और हम हमारे मंदिर के ऑल्टर में हमेशा उनको 6 गोस्वामी उसको हम देखते हैं। उनके अलग अलग विग्रह हैं अलग अलग समय पे। रूप गोस्वामी के विग्रह का क्या नाम है?
गोविंद,
राधा गोविंद। और सनातन गोस्वामी के विग्रह का क्या नाम है?
मदन मोहन,
मदन मोहन,
राधा मदन मोहन। और मधु पंडित गोस्वामी के विग्रह का क्या नाम है?
राधा गोपीनाथ,
राधा गोपीनाथ। तो यहाँ पर बताते हैं वृंदावन के 7 प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इसमें से पहला है श्री मदन मोहन जी मंदिर, जो कि श्री सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित है। दूसरा है श्री गोविंद देव जी मंदिर, जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित है।
अभी बैठ जाओ।
तीसरा है राधा गोपीनाथ मंदिर, जो कि मधु पंडित जी द्वारा स्थापित है। चौथा है राधा दामोदर मंदिर, जो कि किसके द्वारा स्थापित है? हाँ जी, जीव गोस्वामी। एग्जैक्टली करेक्ट, जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित है। राधा श्याम सुंदर जी मंदिर, जो कि श्यामानंद पंडित द्वारा स्थापित है। राधा रमन जी मंदिर, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थापित है। और राधा गोकुलानंद जी मंदिर, जो कि लोकनाथ गोस्वामी द्वारा स्थापित है। तो ये 7 प्रमुख मंदिर है। इसलिए इन 7 मंदिरों को बताया गया है कि जो इन 7 मंदिरों को दर्शन करता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इन 7 मंदिरों में बांके बिहारी जी का नाम नहीं आता है ना। तो जो लोग ये सच, बांके बिहारी जी का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो 7 प्रमुख गोस्वामी नहीं है। तो स्वामी हरिदास हैं, जो कि वैष्णव परंपरा से नहीं फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अपभ्रंश संप्रदाय हैं। तो 6 गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को जो पालन करते हैं वही गोस्वामी बनते हैं। गोस्वामी का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे संप्रदाय का आचार्य ने नियंत्रण किया या नहीं, लेकिन हमारे आचार्य ने उनको ऑथराइज नहीं किया। उनका कहना है कि हमें सिर्फ उन्हीं मंदिर, उन्हीं विग्रह, उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जिसके द्वारा उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है। हम जाएंगे कहीं पर बांके बिहारी मंदिर या किसी भी मंदिर में, और वहां पर जो पुजारी हैं वो आपसे डोनेशंस मांगेंगे, जबरदस्ती करेंगे। तो जैसे अभी बोटमैन हमारे से जबरदस्ती कर रहा था, तो हमारा नेगेटिव लैंग्वेज शुरू हो जाता है भक्तों का। इसलिए मैं सबको कह रहा था आप लोग जाइए, वरना क्या होगा, ऑफेंस हो जाएगा। प्रेम पूर्वक ही सारी चीजों को सेटल करना चाहिए। यहाँ पर कहीं पे भी क्रोध हो गया क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, तो क्या होगा, हमें ऑफेंस लगेगा, अपराध लगेगा, जितना कुछ भी घुमा सब नलिफाई हो जाएगा, 0/0। और हम वहाँ जाते हैं बांके बिहारी, सोचते हैं बड़ा अच्छा है क्योंकि हमने उसको कान से उसकी पब्लिसिटी सुनी है खाली, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक्चुअली वहां जाकर हम अपराध ही करते हैं, पंडाल के खिलाफ बोलते हैं, है ना, सिर्फ पेड़े खरीदते हैं, लस्सी पीते हैं और आ जाते हैं। तो अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं तो आप जब भी वृंदावन आए तो पहला प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में आए, दूसरा मंदिर इस्कॉन मंदिर में आए, और फिर 7 गोस्वामियों के प्रमुख मंदिरों में ही आए। जब भी आए कथा कीर्तन करें, है ना, शॉपिंग करना चाहिए बहुत मिनिमम टाइम, 1/2 घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि धाम शॉपिंग तो हमारी इस्कॉन में भी हो सकती है, द्वारका में भी कपड़े मिलते हैं, बीड बैग मिलते हैं, लेकिन वृंदावन में हम बीड बैग और कपड़े लेने नहीं आए। हम क्यों आए वृंदावन में? शास्त्र को सुनने, लीला स्थली की शक्ति को अपने अंदर लेने हैं। वहां हम रोते रहते हैं, हमें भक्ति की कृपा करिए, भक्ति की कृपा करिए, जब कृपा का समय आता है तो हम बीड बैग और कपड़े मांगते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइफ का, है ना। तो 1/2 घंटे में भी वो वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, उसके लिए पूरा दिन हमें सोचना कि हमें ये चाहिए, वो टाइम चाहिए, तो ऐसा नहीं। या तो फिर आप किसी दिन स्पेशली शॉपिंग के लिए आ सकते हैं, जिस दिन आप अकेले आना चाहें, है ना। लेकिन वृंदावन में अपराध से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ भक्ति करने का 1000 टाइम फल मिलता है। तो अपराध किया तो कितना फल मिलेगा? मतलब यहाँ पर एक माला करी तो 1000 माला का फल, और यहाँ पर एक भक्त का अपराध किया तो 1000 भक्तों का अपराध। तो द्वारका में तो 1000 भक्तों का अपराध आपको टाइम लेगा करने में, उतने तो हैं भी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आप एक ही भक्त का अपराध करके 1000 भक्तों का अपराध कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर किसी के भी खिलाफ नेगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हीं मंदिरों में जाएं जहाँ पर भक्तों का सम्मान होता है, जहाँ पर भक्तों को प्रेम दिया जाता है ना, या फिर भक्तों के संग में जाएं, वो आपको बताएंगे किस तरह से दर्शन, जैसे आपने देखा 2 दिनों में हमने किस प्रकार से दर्शन कथा कीर्तन किया। आप अकेले आएंगे तो आपको कोई पकड़ लेगा और दान पे लड़ाई झगड़ा करके आप वापस मूड खराब करके चले जाएंगे अपना, तो ये समझना चाहिए। तो हमने मदन मोहन जी की आपको लीला बताई, वो जो मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको टीला, वो लंबा सा बिल्कुल, वो राधा मदन मोहन मंदिर है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को स्थापित किया, वहीं पर सनातन गोस्वामी जी की समाधि भी है। सुबह हमने दर्शन किया राधा दामोदर मंदिर का, जिसमें जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधि है ना। और इसी प्रकार से एक राधा गोविंद देव मंदिर है जिसमें हम नहीं गए, जो कि रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित विग्रह है, लेकिन उसकी जगह हम गरुण गोविंद मंदिर चले गए थे। तो मैंने एक लीला आपको बताई थी कि भगवान को यमुना जी की रेत की बाटी बनाकर खिलाते थे, तो फिर जब बाटी खिलाते तो भगवान ने कहा मुझे तो क्या चाहिए, नमक डालकर खिलाओ। तो भगवान को सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आज तो नमक मांग रहे हो, कल खीर मांगोगे। तो जब इस तरह से उनको लगा कि लगता है इसके पास खीर अरेंजमेंट करने का नहीं है सामान, तो दूसरे दिन एक लड़की आती है ब्रज से और कहती है कि मेरे पिताजी ने आपको डोनेशन में, दान में दूध चीनी और चावल दिया है, जिसे आप क्या करिए खीर बनाइए और भगवान को ऑफर करिए। तो उन्होंने खीर बनाई, ऑफर करी, और अपने भाई अनुज, छोटे भाई रूप गोस्वामी को भी बुलाया और कहा कि आप भी आइए भोग प्रसाद को ग्रहण करने से, हम 56 भोग लगाते हैं तो नेबर्स को बुलाते हैं, आप आइए प्रसाद ग्रहण करिए। तो जब रूप गोस्वामी आए तो उस खीर को जैसे ही उन्होंने पहली चम्मच मुख में डाली, वो आनंद विभोर हो गए, आंखों से आंसू, नेत्र से आंसू निकलने लग गया। बोले ये कैसी खीर है, ये तो अमृत अमृत समान है, तुम्हें किसने बनाना सिखाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक लड़की आई थी, उसने कहा मैं ब्रज में रहती हूँ, मेरे पिताजी ने दान दिया है कि ये तो भिक्षा मांगते हैं, इनको दे दो। तो उन्होंने आकर दूध खीर चावल और चीनी दिया और मैंने बनाया। तो रूप गोस्वामी के हाथ से खीर की कटोरी छूट गई। बोले तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। क्यों? अरे वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्वयं राधा रानी थी। हरि बोल, राधा रानी की। तो ऐसी राधा रानी ने कृपा करी तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने बोला कि तुमने क्या किया, तुमने तो राधा रानी को सेवा में लगा दिया। हमें भगवान को सेवा में नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, भगवान की
सेवा।
लेकिन ऐसा हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। भगवान के आगे लेट जाते हैं और अपनी डिमांड की लिस्ट खोल के चेक भी करते रहते हैं, कितनी हो गए, 7, 8, 9, 10 आइटम पूरे, ठीक है, चेक करते रहते हैं, इस बार ये हो गया, इस बार ये हो गया, अगली बार आएंगे बाकी बिहारी तो ये 3 पेंडिंग वाले कंप्लीट करा लेंगे। अरे कोई बिजनेस दुकानदारी थोड़ी है, भगवान को तो प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं क्या, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो भजे तो भव से बेड़ा, भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो तो मुझे
बेकार है।
तो भगवान को एक फूल भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, भगवान कहते हैं, है ना। तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान को भाव प्रेम हमारा पसंद है, ये नहीं कि हम बिजनेस करें भगवान के साथ आकर, ठीक है। तो इसी प्रकार से भगवान को सेवा में नहीं लगाना। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृष्ण की शक्ति हमको क्या करिए, अपनी सेवा में लगाइए। लेकिन जब सेवा के लिए बुलाते हैं आपको मंदिर में, तो आप कहते हैं प्रभु जी एंगेजमेंट है कोई और, है ना। एक तरफ तो माला करके सेवा मांगते हैं, सेवा का टाइम आता है तो कोई एंगेजमेंट है, एक तरफ बोलते हैं भगवान हमें धाम बुलाइए, जब धाम आते हैं तो फिर ड्रेसेस याद आती हैं, शॉपिंग याद आती है। तो आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पहले क्लेरिफाई करिए, आप चाहते क्या है अपने जीवन से। हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं हम लोग ना सारे जीव, तो हमें एक तरफ एक चित्र होना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं ना कि बहुशाखा अनंत शाया, हाँ जो लोग सर्विस क्लास होते हैं ना उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एक कुरुकुरुनंदना, व्यवसाय आत्मिका मतलब जो बिजनेसमैन है उसकी बुद्धि एक ही तरफ रहती है, एक करो कुरुनंदना, कुरुनंदन एक तरफ करो अपनी बुद्धि को। बिजनेसमैन सैटरडे हो संडे हो क्या सोचता है, पैसा प्रॉफिट कैसे होगा, है ना। हमारे सुमित प्रभु जी बीच बीच में पूछते रहते हैं, कहते हैं प्रभु जी कैसे बिजनेस ग्रो करेगा मेरा, और उसमें 50,000 रुपए भी खर्च कर देते हैं। तो हमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का एक हक कुरु कुरु नंदन ना कुरु नंदन एक तरफ करना चाहिए, है ना। और जो अव्यवसायी होता है व्यक्ति सर्विस क्लास, वो क्या सोचता है, 5 दिन का काम, 5 दिन, अब 2 दिन आराम, 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी। तो हमें सर्विस क्लास होना चाहिए, है ना। जहाँ गृहस्थी की जरूरत है वहाँ गृहस्थी को देखें, और जहाँ अध्यात्म की जरूरत है वहाँ अध्यात्म को देखें, कहीं गृहस्थी के चक्कर में आध्यात्मिक जीवन छूट ना जाए, है ना। लेकिन हम तो व्यवसाय आत्मिका बनाने को बोला प्रभुपाद जी ने कि हर समय शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार कार्य करते वक्त भी अपनी भक्ति का वृद्धि करने का प्रयास करें। और भक्ति की वृद्धि कौन दे सकते हैं, श्री गोवर्धन, जिनकी प्रार्थना करने से आपकी हर चीज में वर्धन इंक्रीज होती है, आपकी भक्ति इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही एक आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका कल आपने रात्रि में समाधि भजन कुटीर देखा। रघुनाथ दास गोस्वामी जिस परिवार के रहने वाले थे, उस परिवार में 20 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी थी। कितनी? 20 लाख रुपए पर एनम। अभी भी मेरे ख्याल से इतनी सैलरी द्वारका, दिल्ली में मिलना मुश्किल होता है। जो होती है वो व्यक्ति बहुत बोलते हैं बड़ा अच्छी सैलरी लेता है। 20 लाख रुपए पर एनम की सैलरी थी, जिसमें से उनके पिताजी 8 लाख रुपए का टैक्स चुकाते थे और 12 लाख रुपए सेविंग होती थी। ऐसे परिवार का रहने वाला व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगा, तो उनके पिताजी माताजी ने सोचा क्या करें, इनकी शादी करा देते हैं। शादी करने से क्या होगा, बोलते हैं बच्चा भक्त नहीं बनेगा, शादी कर लेगा तो फिर क्या होगा, ये भक्ति छोड़ देगा। हमारे परिवार ने भी ये सोचा था। तो तो क्या होगा, भक्ति छोड़ देगा। लेकिन जिसको भगवान से सच में प्रेम होगा थोड़ा बहुत भी, तो भक्ति छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही उनकी बहुत सुंदर लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी उनको प्राप्त होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, बार बार अपनी पत्नी अपने परिवार को छोड़कर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का संग करने आते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार कभी नित्यानंद प्रभु से मिलते थे, और नित्यानंद प्रभु से तो एक बार आकर नित्यानंद प्रभु के आगे चरणों में गिर जाते और कहते हैं मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण रख दिए थे, है ना। नित्यानंद प्रभु के चरण मिल गए तो अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो मिलेगी, है ना। बलराम की कृपा मिल गई तो कृष्ण तो मिलेंगे, राधा रानी की कृपा मिली तो कृष्ण तो मिलेंगे, है ना। कृष्ण हमेशा भक्तों के सहारे से मिलते हैं, और हमें अगर प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई तो कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए भगवान से भी ज्यादा भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की फिलॉसफी को समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, है ना। इसलिए जो मेरी सेवा करता है वो मुझे प्यारा होता है, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे सबसे प्यारा होता है। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी की सेवा सबसे ज्यादा यही है कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चले, अपने मन मौजी ना बने। इस्कॉन में जुड़ गए, माला भी करते हैं, पर जो मर्जी हम वो करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति का प्राकट नहीं होगा कभी भी जब तक आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, है ना। डिग्री तभी मिलती है जब स्कूल के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो। 7th क्लास पास करोगे, 8, 9, 10, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। आप सोचे मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया, आप घर में बैठ के कार्टून देखूंगा तो मैं डिग्री कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे रूल्स रेगुलेशंस बताए गए फॉलो करिए एज इट इज। वृंदावन धाम को वृंदावन धाम की तरह देखिए, धाम, है ना। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो छोड़कर आ जाते हैं अपना परिवार, तो उनके पिताजी कहते हैं कि अगर आप ये भाग गया ना तो मैं इसको रस्सियों से बांध दूंगा। तो उनके घर वाले कहते हैं जिसको स्त्री का प्रेम नहीं बांध पाया उसको रस्सी क्या बांधेगी, क्योंकि संसार की सबसे बड़ा बंधन क्या है, स्त्री का आकर्षण। स्त्री आकर्षण ऐसा है या पुरुष आकर्षण ऐसा है, उसके अलावा और कोई बंधन नहीं है जो व्यक्ति को बांध सके। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को खुद स्त्री उनकी पत्नी नहीं बांध सकी तो रस्सी क्या बांधेगी। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां से भाग कर आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, कहां, पुरी में। और वही पुरी से उनको बोला जाता है आप जाइए वृंदावन और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ सेवा करिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आ जाते हैं वृंदावन और अपने 42 साल 42 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ कहाँ दे देते हैं, वृंदावन में। और जहाँ कल हम गए थे राधा कुंड श्याम कुंड पे बैठकर वो भजन किया करते थे, डेली चैंटिंग करते थे, कितनी, 3 लाख नेम्स ऑफ कृष्णा, 3 लाख भगवान के नामों का जप करते थे, 1000 दंडवत करते थे डेली, 1000 मानसिक दंडवत। जैसे आपने मन में सोचा हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी को दंडवत किया, है ना, फिर हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिसिद्धांत महाराज को दंडवत किया, अपने घर में ही 1000 दंडवत करे। तो इस तरह से वो डेली मानसिक दंडवत करते थे और गोवर्धन परिक्रमा करते थे डेली। तो इतने महान आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और जब वो बैठ के भजन करते थे तो उस समय मानस पावन घाट, जो कल आपने देखा रात्रि में अंधेरा हो गया था, तो उसके सामने सनातन गोस्वामी बैठकर जप किया करते थे, तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं जप कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा धूप है, और उस समय धूप में उनको धूप से बचाने के लिए कौन आ गई, एक लड़की आ गई और उसने पर्दा कर दिया ऐसे करके, है ना, और वो छाव में बैठे आराम से मजे में जप कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि अरे ये तो स्वयं राधा रानी इनकी सेवा में लगे हैं, तो दौड़ के गए, बोले रघुनाथ रघुनाथ ये क्या हो गया तुमको, तुमने स्वयं राधा रानी को अपनी सेवा में लगा दिया, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं, उनको सेवा में लगाने के लिए नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तुम भजन कुटीर बनाओ और भजन कुटीर में बैठ के भजन किया करो, लेकिन वो माने नहीं, और फिर वो दोबारा से जंगल में बैठकर उसी मानस पावन घाट पर जप कर रहे थे। सनातन गोस्वामी दूसरे पार बैठ के जप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आज दो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को खाने के लिए आ रहे हैं। तो कल जैसा आपने कुंड देखा वैसा कुंड उस समय नहीं था, उस समय तो चारों तरफ जंगल था। उन्होंने देखा कि दो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को खाने आ रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी जब तक सोचे कुछ बोले, तो देखा एक ग्वाला आया और उसने दोनों शेरों को कुछ बांसुरी से ऐसे ऐसे किया उनके ऊपर, और दोनों शेर टेम्ड हो गए, उनके उनके बस में आ गए और दोनों के दोनों साथ साथ वापस चले गए। जब वो शेर वापस चले गए तो सनातन गोस्वामी ने उस ग्वाल बाल को ध्यान से देखा, अरे ये तो स्वयं श्याम सुंदर की जय, श्याम सुंदर भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी जाकर कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी तुम गोस्वामी तो बन गए लेकिन गोस्वामी बनने लायक नहीं हो, क्यों, क्योंकि तुम स्वयं भगवान को सेवा में लगाते हो, भगवान की सेवा करने के लिए भजन करते हो और खुद भगवान को सेवा में लगाते हो, तुम भजन कुटीर में भजन करो। तो उनके लिए वो कुटिया बनाई गई और उसमें फिर उन्होंने भजन किया। दो या तीन दिन में सिर्फ एक पत्ते को गोल कर उसमें बटर मिल्क छाछ पिया करते थे और कुछ भोजन की आवश्यकता नहीं, और 42 इयर्स लाइफ के काटे 42 साल। हम सोचें कि प्रसाद के बिना प्रभु जी कैसे जीवन चलेगा, जैसे आज सुबह लेट हो गया था प्रसाद, तो आधे से लोगों को तो कथा सुनने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि पेट के चूहे जो है वो हमारे दिमाग पर चढ़ जाते हैं, है ना, सुनने नहीं देते कथा हमको। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ दो तीन दिन में छाछ पीकर ये एस्टेब्लिश किए कि ज्यादा प्रसाद की आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर को चलाने के लिए, खाली छाछ पिए जो सुबह में पी थी राधा गोविंद गरुण गोविंद मंदिर पे, तो उसी से हमारा संतुष्टि हम जीवन चल सकता है, सिर्फ भजन करिए और थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए उसी से जीवन चलेगा। लेकिन आप फिर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा डिपेंडेंट ना हो कि अगर प्रसाद नहीं शॉपिंग नहीं तो धाम यात्रा खराब हो गई। असली धाम में आए भजन करने लीला स्थलियां सुनने के लिए। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी डेली 300,000 नामों का जप 1,000 दंडवत और डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और साथ में एक और कार्य करते थे क्या, भागवतम क्लास 3 घंटे, है 300,000 जप साथ में 3 घंटे भागवतम क्लास, है ना, सोचता 1 घंटे क्लास के लिए दिल्ली में कितना भाग दौड़ होती है, वो सुनने भी नहीं आते लोग, सुनाने नहीं आते, वो 3 घंटे डेली क्लास करते थे। और फिर एक दिन वो क्लास नहीं करते और वो क्या कहते हैं कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो बोले अरे पेट में दर्द कहते, कह रहे मुझे लगता है मैंने ज्यादा खा लिया, कह रहे जो व्यक्ति 3 दिन में सिर्फ छाछ पीता है उसने कैसे ज्यादा खा लिया। तो भक्त जाते हैं हरिदास और बुला के लाते हैं किसको, वैद्य को, और वैद्य कहता है कि चेक करते हैं नाड़ी, नाड़ी चेक करके कहते हैं ओहो इनके तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया, जो व्यक्ति 3 दिन में 2 दिन में एक बार छाछ पीता से कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि जब आज मैं सुबह जप कर रहा था तो जप में राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, और उस जन्म उत्सव में राधा अष्टमी के दिन खूब बड़ी क्या थी, फेस्टिवल था, फीस्ट था, तो सारी सखियों ने, क्योंकि खुद रघुनाथ दास गोस्वामी एक मंजरी हैं, तो उन्होंने कहा मंजरी होने के नाते उन्होंने मुझे जबरदस्ती खूब खिलाया, एक्स्ट्रा खिलाने से क्या हुआ, मेरे पेट में ओवर ईटिंग के कारण कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, इनडाइजेशन हो गया। तो समझिए कि लीला स्मरण से ही उनके हृदय में सारी चीजें प्रकट हो जाती थी, इसलिए उनको भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो हरि नाम में इतनी शक्ति है, ये कोई भी चीज आपको जीवन की दिला सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हम चाहते क्या है। अगर आप सोचे हरे कृष्णा गाड़ी मिल जाए, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ही आपके जब से आपको कार प्राप्त हो जाएगी, आप कहेंगे मेरा जब बढ़िया चल रहा है, मेरी जॉब बढ़ती जा रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आप इनडायरेक्टली गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भजन का फल ये है कि आपका वैराग्य जीवन में आना चाहिए, चीजें मिल जाए प्रारब्ध के अनुसार ठीक है, लेकिन उनसे अटैचमेंट समाप्त हो तो ये एक्चुअली हरि नाम का फल मिल रहा है आपको। ज्यादातर लोगों से पूछो कैसा चल रहा है, कह रहे बढ़िया चल रहा है, दुकान में पहले 8 लाख की कमाई थी अभी 15 लाख की हो गई है, क्यों प्रभु जी, है ना,
सही बात।
तो ये हरि नाम का फल नहीं है, तो हमें समझना चाहिए इन सारी चीजों को। और जो आज हम सुबह एक स्थान पे गए थे, कहाँ, राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पर जो है एक शिला आपने देखा जिसके ऊपर गाय का खुर था और भगवान का चिन्ह प्रचरण चिन्ह था और एक लाठी का निशान था, तो सनातन सनातन बंसी का, तो सनातन गोस्वामी डेली परिक्रमा किया करते थे वृंदावन गोवर्धन की डेली, है ना। हम एक दिन में गए तो कल रात को फीडबैक सेशन में आधे लोग आए नहीं, बोले प्रभु जी थक गए बहुत ज्यादा, जबकि हमने परिक्रमा भी नहीं करी। आप सोचिए बहुत सारे लोग तो उत्साहित थे परिक्रमा करने के लिए, है ना, लेकिन परिक्रमा करते तो क्या हालत हो जाती सारे लोगों की। सनातन गोस्वामी 80 इयर्स की एज में डेली परिक्रमा करते थे 80 साल की उम्र में, और जब वो 80 साल के हुए और एक दिन वो परिक्रमा करते करते बेहोश हो जाते थे। जब बेहोश हुए तो आकर स्वयं गोपाल ने, कृष्ण ने आकर उनको एक शिला प्रदान किया, जो शिला आपने दर्शन किया ये 500 साल पुराना है, स्वयं सनातन गोस्वामी को दिया हुआ। और शिला को क्या बोला कृष्ण ने कि तुम इसे ले जाओ और इसकी परिक्रमा करो तो उसी से मेरी परिक्रमा मैं पूर्ण मान लूंगा। तो फिर वही परिक्रमा का शिला जो है वो रखा गया है, और फिर सनातन गोस्वामी जो थे वो इसको परिक्रमा किया करते थे। तो ये आप सोचिए 80 साल का कोई भक्त, सनातन गोस्वामी जैसा भक्त जिसके लिए मदन मोहन स्वयं बोलते हैं, खुद उनके लिए खीर लेकर राधा रानी आती है, उनको अलाउड था कि चार परिक्रमा करो तो फल प्राप्त होगा। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि द्वारका से आते हैं महिसाल में एक बार और परिक्रमा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी परिक्रमा से, हाँ तो वो फल हमारे लिए नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो ये मानसिक संतुष्टि के लिए हम उसे कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई उसमें भक्ति हमारी इंक्रीज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सनातन गोस्वामी की लीला थी। और ये जो केशी घाट जिस पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भगवान ने केशी राक्षस का वध किया था जो कि घोड़े के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए। और बताते हैं कि वो कौन है, हमारा अहंकार है जीवन का, जिसको मारना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने हर एक लीला से कुछ ना कुछ सिखाया है, तो केशी राक्षस को मारकर भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमें सबसे पहले किसका वध करना चाहिए, अपने अहंकार का वध करना चाहिए। कर्ता की भावना से रहित होकर सेवा करनी चाहिए, कोई भी सेवा करें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका कर्ता मैं हूँ। जब व्यक्ति ये सोचता है तो उसकी सेवा का उसे कोई फल नहीं मिलता है, है ना। तो ये केशी घाट है जहाँ पर भगवान ने केशी राक्षस का वध किया, बाद में भक्तों ने इस घाट को पूरा कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर कई बार बोट फेस्टिवल भी होता है, यहाँ पे रहते थे कुछ गौड़िया मठ के भक्त रहते हैं, अभी भी ऊपर जाकर कुछ फॉरेनर डिवोटीज भी रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई पहले कोई नहीं रहता था भक्तों का रहने के लिए, मतलब जैसे होता है ना जैसे कोई आता था उस पार से इस पार आया अपना, नहीं तो गेस्ट हाउस टाइप में रुकने के लिए।
पहले सिर्फ जंगल था,
हाँ 400-500 साल पहले तो जंगल ही था ना, कुछ नहीं 400-500 ईयर्स सारा कुछ 500 साल पहले बताया ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, अकबर वगैरह ने डोनेशन दे दे के सारी चीजें बनवाई वृंदावन। तो केशी घाट है ये, तो हमें अपने अहंकार का वध करना है। फिर आगे जाते हैं तो कालिया लीला आती है जहाँ पर कालिया सांप को भगवान ने मारा था, और उसके पहले कदम का वृक्ष जहाँ भगवान ने चीर घाट चीर चुराए थे राधा रानी और उनकी सखियों के, बहुत अनेकों लीलाएं हैं। फिर आगे राधा मदन मोहन मंदिर है, इमली ताला है, इमली ताला में बहुत सुंदर लीला हुई थी। और यहाँ पर जो आज बोट फेस्टिवल हो रहा है, ऐसे बोट फेस्टिवल होता है कि अपने इस्कॉन टेम्पल से डीटीज आती हैं यहाँ पर बड़ी वाली, और यहाँ बैठते हैं सारे भक्त हर एक इसके ऊपर, और यहाँ कीर्तन होता है, और इस पार से उस पार फ्लावर से डेकोरेट करके बोट को लेके जाते हैं और फिर उधर से इधर लेके आते हैं, है ना। और सारे भक्त इधर बैठ के ठंडी हवा चलते कीर्तन करते हैं, रात्रि तक प्रोग्राम चलता है, प्रवचन होते हैं, कथा प्रसादम होता है, सब यहीं पर होता है सारा। बोट फेस्टिवल मंदिर में भी होता है लेकिन यहाँ पर कभी कभी होता है, बहुत दिनों से हुआ नहीं है वैसे, मैंने देखा नहीं, पहले बहुत साल पहले होता था। तो बोट फेस्टिवल होता है। और एक और लीला सुनाकर हम समाप्त करते हैं कि जो है एक बार राधा रानी जो थी वो इस पार से उस पार जाना चाहती थी, इस पार से उस पार जाना चाहती थी, बिल्कुल इसी प्लेस की लीला है, इसी स्थान की, इस पार से उस पार जाना चाहती थी, दूसरा गांव है वृंदावन का। तो जब उस पार जाना चाहती थी तो क्या किया उन्होंने, बोट वाले से बोला, जैसे हमने बोला उस पार ले चलो, तो बोट वाले से बोला कि उस पार ले चलो, तो बोट वाले ने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। तो साथ में और भी सखियां थी जो यहाँ से कर चुकाने आती थी मथुरा में, उस पार से इस पार आती थी बरसाना से, बरसाना से उधर आई, फिर कर चुकाने के लिए इधर आई, फिर यहाँ पे कर चुकाया मतलब जितने मटके दही निकला उसका 50% या 20% दिया कंस को, कंस के दूत यहाँ से ले जाते थे, और फिर दोबारा बोट में बैठे और फिर चले गए। तो जब वो बैठे सारी सखियां, तो अपना कुछ उनके पास मटके थे बहुत सारे भरे हुए, तो आ रही थी। तो जैसे ही बोट में बैठी तो बोट में बोटमैन कौन थे? कृष्णा। हरि बोल। श्याम सुंदर की। श्याम सुंदर भगवान बैठे थे बोट के अंदर और बोले कि सारी सखियां चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। तो अपना रूप बना के आए थे बोटमैन का, नाविक का एक रूप बनाया था और चढ़ गए। चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, डोनेशन मतलब पैसे के रूप में क्या चाहिए? हाँ, मक्खन दही दूध। तो सारी सखिया बोली कि हमारे पास, हम आपको धन वो तो दे सकते हैं, क्वाइंस दे सकते हैं, लेकिन दूध दही नहीं दे सकते हैं, दूध दही तो किसी और के लिए है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो दूध दही चाहिए था, अब कुछ लीला करनी पड़ेगी दूध दही के लिए। तो उन्होंने कहा अगर मेरा नहीं तो फिर तुम्हारा भी नहीं है ना। भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसे भगवान हमें भी कहते हैं, या तो मुझे दान दे दो अपने पैसे का, या फिर तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। है ना, इसीलिए लॉसेस होते हैं आदमी को। तब है 5,000 रुपए चले गए, 50,000 चले गए, 5,00,000 का नुकसान हो गया। और कोई बोले 5,00,000 मंदिर में दान दे दो, देगा कोई? नहीं देगा। तो भगवान कहते हैं ना तुम्हारे पास रहने दूंगा, या तो मुझे दे दो फिर, है ना। तो इस तरह से उन्होंने राधा रानी को बोला मुझे दे दो, नहीं दिया। तो थोड़ी दूर में बीच में जहां पहुंचे, जब हमारी नाव टकरा रही थी तो काफी भक्त घबरा रहे थे, तो उसी प्रकार से सारी सखियां चिल्लाने लगी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बचा लो बचा लो। तो इस प्रकार से चिल्लाए तो वहां पर पूरा सरकम ऐसे सरकमफ्रेंस में ऐसे गोल गोल घूमने लगी बोट्स, और सब घबरा गए क्या होगा, डूब जाएगी नाव। उन्होंने कहा देखो नाव तभी बच सकती है, नाव में पानी भरने लगा है, क्या करो अपना धीरे धीरे सामान फेंकना शुरू कर दो, है ना। तो सारी सखियों ने क्या किया, एक एक करके अपने मटके फेंकने शुरू कर दिए, है ना। उन्होंने कहा कि एक मटका फेंका, दो मटके फेंके, कह रहे और फेंको और फेंको। कृष्ण भगवान ने सारे फटके फेंके, कह रहे हाय हाय सारा मटके चले गए, सारा दूध पूरी यमुना में सफेद सफेद पानी, पूरे में मटका में पानी, दूध 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 हो गया पूरे में। और कृष्ण भगवान बड़े खुश हो रहे थे। अभी बोट क्या हो रहा था, ऐसे 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 पूरा हिल रही थी, पूरा हिल रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उस पार वजन ज्यादा है, इस पार वजन कम है। तो सारी सखियों को क्या करना पड़ेगा, अपने इस पार आना पड़ेगा कुछ सखियों को, और कुछ सखियों को उधर रहना पड़ेगा।
चलो
चलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कुछ सखियों को इस पार आना पड़ेगा। तो सारी सखियां जो थी वो उसमें से कोई सखी आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि किसी नाविक के साथ हम क्यों बैठे। तो उन्होंने कहा कि अभी भी इसका वजन ज्यादा है, मुझे लगता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने वस्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। तो कृष्णा कहते हैं कि तुम तो क्या पहनती हो, हैवी ज्वेलरी पहनती हो, है ना, उसमें क्या लगा होता है, सोने जरकिन की साड़ियां, सब जो लहंगे बड़े बड़े भारी भारी, मतलब यहाँ पर जब वेडिंग होती है ब्रज में तो बहुत हैवी हैवी साड़ीज पहनते हैं ना इंडिया में। तो यहाँ उस टाइम तो गोपीज पहनती थी बड़ी डेकोरेटेड साड़ीज लहंगा। तो उन्होंने कहा कि एक एक जो है वो 20 किलो का है और 12-15 सखी है, है ना, तो मतलब 100-150 किलो वजन कम हो जाएगा, मेरी नाव से भी फेंको सारे वस्त्र। अभी सारी घबरा गई कि श्याम सुंदर तुम हमारे वस्त्र फेंकने के लिए कहते हो, नाविक तुम हमारे वस्त्र फेंकने के लिए कहते हो कि चलो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती हैं सखियों को पकड़ो इनके दोनों हाथ, एक साइड से एक साइड और एक साइड से एक साइड, हाँ समझ गए कि कुछ शरारत कर रहा है ना। तो दोनों साइड पकड़ेंगे और हम क्या बोलेंगे, 1, 2 और 3 छपाक पानी में फेंक देंगे तुमको, नाविक चुपचाप ले चलो निकालो हमें यहाँ से। तो इस तरह से जब उन्होंने बोला तो राधा रानी की बात सुनकर कृष्ण थोड़े सहम गए, बोले लगता है आज तो गुस्से में है, फेंक ही देंगे मेरे को उठा के। तो कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, उस पार से इस पार एक सखी आ जाएगी तो काम चलेगा। नया ठीक है, कौन सी सखी आएगी? कह रहे हैं तुम में से जो सबसे सुंदर है, क्योंकि सुंदरता के कारण भार उधर ज्यादा बढ़ गया है। तो वे बोलते हैं ठीक है, राधा रानी को इस पार भेज देते हैं। तो राधा रानी कहती है मुझे अकेले डर लगेगा, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं घबराओ मत। तो राधा रानी फिर आ जाती है, लेकिन उनके दूर बैठी होती है। तो बोट थोड़ी देर चलती है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा बादल आ जाता है और बिजली कड़कने लगती है। पूरी जब बिजली खड़कती है, गरजती है, बादल गरजते हैं, तो क्या होता है, राधा रानी घबरा जाती हैं और घबरा के क्या करती है, नाविक का आलिंगन कर लेती हैं, पूरा पकड़ लेती हैं, है ना। तो सारी सखियां हैरान रह जाती हैं कि इसने आलिंगन किया लेकिन अभी तक छोड़ा क्यों नहीं नाविक को, अभी तो बादल भी हट गए, वापस उजाला हो गया, क्या है ऐसा कारण जिन्होंने इसको आलिंगन कर रखा है अभी तक राधा रानी है। तो ललिता विशाखा चंपक लगता भूदेवी सारी चिल्लाती हैं, हे राधे छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो, ये जो नाविक है किसको पकड़ रखा है, श्याम सुंदर को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। तो राधा रानी ऐसे जब आलिंगन किए थी तो उनके पीछे यहाँ क्या लगी थी, वो निकाल के कहती है हे 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 ये नाविक नहीं है, ये तो श्याम सुंदर है। तो भगवान राधा रानी को पता चल जाता है, और फिर धीरे धीरे श्याम सुंदर उनको इस पार लाकर छोड़ देते हैं। श्याम सुंदर भगवान की, राधा श्याम सुंदर की, पतित पावन शील प्रभुपाद की, केशी घाट की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, वृंदावन धाम यात्रा की, हिताय गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्ण प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की। चलिए
आगे का कार्यक्रम है। अभी हम जाएंगे यहाँ से टेंपल में, इस्कॉन टेंपल, और वहाँ पर इस्कॉन टेंपल में, हरि बोल सुनिए, इस्कॉन टेंपल जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करना है, जिसको जो करना है, शॉपिंग करना है, मंदिर के सामने दुकानें हैं। 5:15 हम बस जो है वो भक्ति विधान गेट पर खड़ी है, वहाँ पे अपना सामान ले लेके
प्रेम मंदिर के पास,
प्रेम मंदिर
से आगे, गवर्नमेंट पार्किंग,
तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं,
सरकारी पार्किंग पे।
जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारे साथ रह सकते हैं, जो अकेले जाना चाहते हैं वो शॉपिंग करके और वहाँ चले जाएं।
5:15 गवर्नमेंट पार्किंग है, बस वहाँ पर मिलेंगे सारे।
और प्रसाद के लिए आपके लिए कुछ स्नैक्स का अरेंजमेंट करते हैं, समोसे और साथ में कुछ जूस या कचौड़ी।
समोसे की जगह पे फीलिंग होगी,
नहीं वाली
समोसे मैं वहाँ
चाय कैसे,
हर्बल टी, वो तो लाई है ना माता जी,
मैं चाय लाया हूँ। तो कैसे बनाएंगे, बाहर चाय वाले से किसी से आपको बात करनी पड़ेगी, आप पहले अपना कर लो, बस में बैठने से पहले किसी चाय वाले से बात कर लो।
समोसे की जगह पे वहाँ पे मैंने देखा आलू बूंदा है,
आलू बूंदा
फीलिंग ज्यादा अच्छी है,
वो ले लेते
हैं। हेवी रहेगा वो।